भूत संस्कार अवचेतन मन में छिपा होने से नहीं दिखता। कोई कोई विचार ही तात्कालिक क्रिया के रूप में परिणत हो पाता है, अन्यथा मनुष्य के वे ही विचार क्रिया के रूप में परिणत होते हैं जो प्रौढ़ होकर संस्कार बन जाते हैं। वे विचार जो जन्म के साथ ही क्रियान्वित हो जाते हैं प्रायः संस्कारों के जाति के ही होते हैं। संस्कारों से भिन्न तात्कालिक विचार कदाचित ही क्रिया के रूप में परिणत हो पाते हैं, बशर्ते कि वे संस्कार के रूप में परिपक्व न हो गए हों। वे संतुलित तथा प्रौढ़ मस्तिष्क वाले व्यक्ति अपने अवचेतन मस्तिष्क को पहले से ही उपयुक्त बनाए रहते हैं, जो अपने तात्कालिक विचारों को क्रिया रूप में बदल देते हैं। इसका कारण इसके सिवाय और कुछ नहीं होता है कि उनके संस्कारों और प्रौढ़ विचारों में भिन्नता नहीं होती, एक साम्य तथा अनुरूपता होती है। संस्कारों के अनुरूप मनुष्य का चरित्र बनता है और विचारों के अनुरूप संस्कार। विचारों की एक विशेषता यह होती है कि यदि उनके साथ भावनात्मक अनुभूति का समन्वय कर दिया जाता है तो वे न केवल तीव्र और प्रभावशाली हो जाते हैं बल्कि शीघ्र ही पककर संस्कारों का रूप धारण कर लेते हैं। किन्हीं विषयों के चिंतन के साथ यदि मनुष्य की भावनात्मक अनुभूति जुड़ जाती है तो वह विषय मनुष्य का बड़ा प्रिय बन जाता है। यही प्रियता उस विषय को मानव मस्तिष्क पर हर समय प्रतिबिंबित बनाए रहती है। फलतः उसी विषय में चिंतन मनन की प्रक्रिया भी अबाध गति से चलती है और वह विषय अवचेतन में जा जाकर संस्कार रूप में परिणत होता रहता है। इसी नियम के अनुसार बहुधा देखा जाता है कि अनेक लोग लोकप्रियता के कारण भोगवासनाओं को निरंतर चिंतन से संस्कारों में सम्मिलित कर लेते हैं। बहुत कुछ पूजा पाठ सत्संग और धार्मिक साहित्य का अध्ययन करते रहने पर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते। वे चाहते हैं कि संसार के नश्वर भोगों और अकल्याणकर वासनाओं से विरक्ति हो जाए, लेकिन उनकी यह चाह पूरी नहीं हो पाती। धर्म कर्म और विरक्ति भाव में रुचि होने पर भी भोग वासनाएं उनका साथ नहीं छोड़ पाती। विचार जब तक संस्कार नहीं बन जाते मानव वृत्तियों में परिवर्तन नहीं ला सकते। संस्कार रूप भोग वासनाओं से छूट सकना तभी संभव होता है जब अखंड प्रयत्न द्वारा पूर्व संस्कारों को धूमिल बनाया जाए और वांछनीय विचारों को भावनात्मक अनुभूति के साथ चिंतन मनन और विश्वास के द्वारा संस्कार रूप में प्रौढ़ और परिपुष्ट किया जाए। पुराने कुसंस्कारों से छूटना परमावश्यक है। चरित्र मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ संपदा है। यही वह धुरी है जिस पर मनुष्य का जीवन सुख शांति और मान सम्मान की अनुकूल दिशा अथवा दुख दारिद्र्य तथा अशांति असंतोष की प्रतिकूल दिशा में गतिमान होता है। जिसने अपने चरित्र का निर्माण आदर्श रूप में कर लिया उसने मानव लौकिक सफलताओं के साथ पारलौकिक सुख शांति की संभावनाएं स्थिर कर ली और जिसने अन्य नश्वर संपदाओं के माया मोह में पड़कर अपनी चारित्रिक संपदा की उपेक्षा कर दी उसने मानव लोक से लेकर परलोक तक के जीवन पथ में अपने लिए नारकीय पड़ाव का प्रबंध कर लिया। यदि सुख की इच्छा है तो चरित्र का निर्माण करिए, धन की कामना है तो आचरण ऊंचा करिए, स्वर्ग की वांछा है तो भी चरित्र को देवोपम बनाइए और यदि आत्मा परमात्मा अथवा मोक्ष मुक्ति की जिज्ञासा है तो भी चरित्र को आदर्श एवं उदात्त बनाना होगा। जहाँ चरित्र है वहाँ सब कुछ है, जहाँ चरित्र नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, भले ही देखने सुनने के लिए भंडार के भंडार क्यों न भरे पड़े हों। चरित्र की रचना संस्कारों के अनुसार होती है और संस्कारों की रचना विचारों के अनुसार। अस्तु आदर्श चरित्र के लिए आदर्श विचारों को ही ग्रहण करना होगा। पवित्र कल्याणकारी और उत्पादक विचारों को चुन चुनकर अपने मस्तिष्क में स्थान दीजिए। अकल्याणकर दूषित विचारों को एक क्षण के लिए भी पास मत आने दीजिए। अच्छे विचारों का ही चिंतन और मनन करिए। अच्छे विचार वालों से संसर्ग करिए, अच्छे विचारों का साहित्य पढ़िए और इस प्रकार हर ओर से अच्छे विचारों से ओतप्रोत हो जाए। कुछ ही समय में आपके उन शुभ विचारों से आपकी एकात्मक अनुभूति जुड़ जाएगी, उनके चिंतन मनन में निरंतरता आ जाएगी, जिसके फलस्वरूप मांगलिक विचार चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क में संस्कार बन बनकर संचित होने लगेंगे और तब उन्हीं के अनुसार आपका चरित्र निर्मित और आपकी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से आप संचालित होने लगेंगी। आप एक आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति बनकर सारे श्रेयों के अधिकारी बन जाएंगे। मन और मस्तिष्क जो मानव शक्ति के अनंत स्रोत माने जाते हैं और जो वास्तव में है भी, उनका प्रशिक्षण विचारों द्वारा ही होता है। विचारों की धारणा और उनका निरंतर मनन करते रहना मस्तिष्क का प्रशिक्षण कहा गया है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में कोई विचार रखकर उसका निरंतर चिंतन एवं मनन करता रहता है, वे विचार अपने अनुरूप मस्तिष्क में रेखाएं बना देते हैं, ऐसी प्रणालियां तैयार कर दिया करते हैं कि मस्तिष्क की गति उन्हीं प्रणालियों के बीच ही उसी प्रकार बंध कर चलती है जिस प्रकार नदी की धार अपने दोनों कूलों से मर्यादित होकर। यदि दूषित विचारों को लेकर मस्तिष्क में मंथन किया जाएगा तो मस्तिष्क की धाराएं दूषित हो जाएंगी, उनकी दिशा विकारों की ओर निश्चित हो जाएगी और उसकी गति दोषों के सिवाय गुणों की ओर न जा सकेगी। इसी प्रकार जो बुद्धिमान मस्तिष्क में परोपकारी और परमार्थी विचारों का मनन करता रहता है, उसका मस्तिष्क परोपकारी और परमार्थी बन जाता है और उसकी धाराएं निरंतर कल्याणकारी दिशा में ही चलती रहती हैं। इस प्रकार इसमें कोई संशय नहीं रह जाता है कि विचारों की शक्ति अपार है। विचार ही संसार की धारणा के आधार और मनुष्य के उत्थान पतन के कारण होते हैं। विचारों द्वारा प्रशिक्षण देकर मस्तिष्क को किसी ओर मोड़ा और लगाया जा सकता है। अस्तु, बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य मनोविकारों और बौद्धिक स्फुरणाओं में से वास्तविक विचार चुन ले और निरंतर उनका चिंतन एवं मनन करते हुए मस्तिष्क का परिष्कार कर डाले। इस अभ्यास से कोई भी कितना ही बुद्धिमान, परोपकारी, परमार्थी और मुनि, मानव या देवता का विस्तार पा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति के आधार सद्विचार। अविचारी व्यक्ति कितने ही सुंदर आवरण अथवा आडंबर में छिपकर क्यों न रहे, उसकी अविचारिता उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट झलकती रहेगी। नित्य प्रति के सामान्य जीवन का अनुभव इस बात का साक्षी है कि बहुत बार हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं जो सुंदर वेशभूषा के साथ साथ सूरत शक्ल से भी बुरे और भद्दे नहीं होते, तब भी उनको देखकर हृदय पर अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं होती। यदि हम यह जानते हैं कि हम बुरे आदमी नहीं हैं और इस प्रतिक्रिया के पीछे हमारी विरोध भावना अथवा पक्षपाती दृष्टिकोण सक्रिय नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि वे अच्छे विचार वाले नहीं हैं। उनका हृदय उस प्रकार स्वच्छ नहीं है जिस प्रकार बाह्य वेश। इसके विपरीत कभी कभी ऐसा व्यक्ति संपर्क में आता जाता है जिसका बाह्य वेश न तो सुंदर होता है और न उसका व्यक्तित्व ही आकर्षक होता है, तब भी हमारा हृदय उससे मिलकर प्रसन्न हो उठता है, उससे आत्मीयता का अनुभव होता है। इसका अर्थ यही है कि वह आकर्षण बाह्य का नहीं अंतर का है, जिसमें सद्भावनाओं तथा सद्विचारों के फूल खिले हुए हैं। इस विचार प्रभाव को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जब एक सामान्य पथिक किसी ऐसे मार्ग से गुजरता है जहां पर अनेक वृक्षों ने खेल रहे हों, सुंदर पक्षी कलोल कर रहे हों, तो वे जीव उसे देखकर सतर्क भले हो जाएं और उस अजनबी को विस्मय से देखने लगे किंतु भयभीत कदापि नहीं होते। किंतु यदि उसके स्थान पर जब कोई शिकारी अथवा गीदड़ आता है तो वे जीव भय से त्रस्त होकर भागने और चिल्लाने लगते हैं। वे दोनों ऊपर से देखने में एक जैसे मनुष्य ही होते हैं, किंतु विचार के अनुसार उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। कितनी ही सज्जनोचित वेशभूषा में क्यों न हो, दुष्ट दुराचारी को देखते ही पहचान लिया जाता है। साधु तथा सिद्धों के वेश में छिपकर रहने वाले अपराधी अनुभवी पुलिस की दृष्टि से नहीं बच पाते और बात की बात में पकड़े जाते हैं। उनके हृदय का दुर्भाव उनका सारा आवरण भेद कर व्यक्तित्व के ऊपर बोलता रहता है। जिस प्रकार के मनुष्य के विचार होते हैं, वस्तुतः वह वैसा ही बन जाता है। इस विषय में एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि भृंगी पतंग झींगुर को पकड़ लेता है और बहुत देर तक उसके सामने रहकर गुंजार करता रहता है, यहां तक कि उसे देखते देखते बेहोश हो जाता है। उस बेहोशी की दशा में झींगुर की विचार परिधि निरंतर उस भृंगी के स्वरूप तथा उसकी गुंजार से घिरी रहती है, जिसके फलस्वरूप वह झींगुर भी कालांतर में भृंगी जैसा ही बन जाता है। इसी भृंगी तथा कीट के आधार पर आदि कवि वाल्मीकि ने सीता और राम के प्रेम को वर्णन करते हुए एक बड़ी सुंदर उक्ति अपने महाकाव्य में प्रस्तुत की है। उन्होंने लिखा कि सीता ने अशोक वाटिका की सहचरी विभीषण की पत्नी सरमा से एक बार कहा, सरमे, मैं अपने प्रभु राम का निरंतर ध्यान करती रहती हूँ। उनका स्वरूप प्रतिक्षण मेरी विचार परिधि में समाया रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि भृंगी और पतंग के समान इस विचार तन्मयता के कारण मैं राम रूप ही हो जाऊं और तब हमारे दाम्पत्य जीवन में बड़ा व्यवधान पड़ जाएगा। सीता की चिंता सुनकर शर्मा ने हंसते हुए कहा, देवी, आप चिंता क्यों करती हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में जरा भी व्यवधान नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार आप भगवान के स्वरूप का विचार करती रहती हैं, उसी प्रकार राम भी तो आपके रूप का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार यदि आप राम बन जाएंगी तो राम सीता बन जाएंगे। इससे दाम्पत्य जीवन में क्या व्यवधान पड़ सकता है। परिवर्तन केवल इतना होगा कि पति पत्नी और पत्नी पति बन जाएगी। इस उदाहरण में कितना सत्य है नहीं कहा जा सकता, किंतु यह तथ्य मनोवैज्ञानिक आधार पर पूर्णतया सत्य है कि मनुष्य जिन विचारों का चिंतन करता है उनके अनुरूप ही बन जाता है। इसी संदर्भ में एक गुरु ने अपने एक अविश्वासी शिष्य की शंका दूर करने के लिए उसे प्रायोगिक प्रमाण दिया। उन्होंने उस शिष्य को बड़े बड़े सींगों वाला एक भैंसा दिखाकर कहा कि इसका यह स्वरूप अपने मन पर अंकित करके और इस कुटी में बैठकर निरंतर उसका ध्यान तब तक करता रहे जब तक वे उसे पुकारे नहीं। निदान शिष्य कुटी में बैठा हुआ बहुत समय तक उस भैंसे का और विशेष प्रकार के उसके बड़े बड़े सींगों का स्मरण करता रहा। कुछ समय बाद गुरु ने उसे बाहर निकलने के लिए आवाज दी। शिष्य ने ज्यों ही खड़े होकर दरवाजे में सिर डाला कि वह अटक कर रुक गया। ध्यान करते करते उसके सिर पर उसी भैंसे की तरह बड़े बड़े सींग निकल आए थे। उसने गुरु को अपनी विपत्ति बतलाई और कृपा करने की प्रार्थना की। तब गुरु ने उसे फिर आदेश दिया कि वह कुछ समय उसी प्रकार अपने स्वाभाविक स्वरूप का चिंतन करे। निदान उसने ऐसा किया और कुछ समय में उसके सीन गायब हो गए। आख्यान भले ही सत्य न हो किंतु उसका निष्कर्ष अक्षरशः सत्य है कि मनुष्य जिस बात का चिंतन करता रहता है, जिन विचारों में प्रधानतया तन में रहता है, वह उसी प्रकार का बन जाता है। दैनिक जीवन के सामान्य उदाहरणों को ले लीजिए। जिन बच्चों को भूत प्रेतों की काल्पनिक कहानियां तथा घटनाएं सुनाई जाती रहती हैं, वे उनके विचारों में घर कर लिया करती हैं, और जब कभी वे अंधेरे उजाले में अपने उन विचारों से प्रेरित हो जाते हैं तो उन्हें अपने आसपास भूत प्रेतों का अस्तित्व अनुभव होने लगता है, जबकि वास्तव में वहां कुछ होता नहीं है। उन्हें परछाइयों तथा पेड़ पौधों तक में भूतों का आकार दिखाई देने लगता है। यह उनके भूतात्मक विचारों की ही अभिव्यक्ति होती है जो उन्हें दूर पर भूतों के आकार में दिखलाई देती है। अंधविश्वासियों के विचार में भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है और उसी दोष के कारण वे कभी कभी खेलने कूदने और तरह तरह की हरकतें तथा आवाजें करने लगते हैं। यद्यपि ऊपर किसी बाह्य तत्व का प्रभाव नहीं होता, तथापि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भूत अथवा प्रेत ने दबा लिया है, किंतु वास्तविकता यह होती है कि उनके विचारों का विकार ही अवसर पाकर उनके सिर चढ़कर खेलने लगता है। किसी दुर्बुद्धि अथवा दुर्बल मना व्यक्ति का जब यह विचार बन जाता है कि कोई उस पर उसे मारने के लिए टोना कर रहा है, तब उसे अपने जीवन का ह्रास होता अनुभव होने लगता है। जितना जितना यह विचार विश्वास में बदलता जाता है, उतना उतना ही वह अपने को क्षीण, दुर्बल तथा रोगी होता जाता अनुभव करता है। अंत में ठीक ठीक रोगी बनकर एक दिन मर तक जाता है, जबकि चाहे उस पर कोई टोना किया जा रहा होता है अथवा नहीं। फिर टोना आदि में उनके प्रेत पिशाचों में वह शक्ति कहाँ जो जीवन मरण के ईश्वरीय अधिकार को स्वयं ग्रहण कर सकें। यह और कुछ नहीं तदनुरूप विचारों की ही परिणति होती है। मनुष्य के आंतरिक विचारों के अनुरूप ही बाह्य परिस्थितियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यापारी को ले लीजिए। यदि वह निर्बल विचारों वाला है और भय तथा आशंका के साथ खरीद फरोख्त करता है, हर समय यही सोचता रहता है कि कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं माल का भाव न गिर जाए, कोई रद्दी माल आकर न फंस जाए, तो मानो उसे अपने काम में घाटा होगा अथवा उसका दृष्टिकोण इतना दूषित हो जाएगा कि उसे अच्छे माल में भी त्रुटि दिखने लगेगी, ईमानदार आदमी बेईमान लगने लगेंगे और उसी के अनुसार उसका आचरण बन जाएगा, जिससे बाजार में उसकी बात उठ जाएगी, लोग उससे सहयोग करना छोड़ देंगे और वह निश्चित रूप से असफल होगा और घाटे का शिकार बनेंगे। अशुभ विचारों से शुभ परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। कोई मनुष्य कितना ही अच्छा तथा भला क्यों न हो, यदि हमारे विचार उसके प्रति दूषित हैं, विरोधी अथवा शत्रुतापूर्ण हैं, तो वह जल्दी ही हमारा विरोधी बन जाएगा। विचारों की प्रतिक्रिया विचारों पर होना स्वाभाविक है, इसको किसी प्रकार भी वर्जित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, यदि हमारे विचार स्वयं अपने प्रति ओछे तथा हीन हो जाएं, हम अपने को अभागा एवं अक्षम चिंतन करने लगे, तो कुछ ही समय में हमारे सारे गुण नष्ट हो जाएंगे और हम वास्तव में दीनहीन और मलिन बन जाएंगे। हमारा व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाएगा, जो समाज में व्यक्त हुए बिना बच नहीं सकता। जो आदमी अपने प्रति उच्च तथा उदात्त विचार रखता है, अपने व्यक्तित्व का मूल्य कम नहीं आंकता, उसका मानसिक विकास सहज ही हो जाता है। उसका आत्म विकास, आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव जाग उठता है। इसी गुण के कारण बहुत से लोग जो बचपन से लेकर यौवन तक दब्बू रहते हैं, आगे चलकर बड़े प्रभावशाली बन जाते हैं। जिस दिन से आप किसी दब्बू, डरपोक तथा साहसहीन व्यक्ति को उठकर खड़े होते और आगे बढ़ते देखें, समझ लीजिए कि उस दिन से उसकी विचारधारा बदल गई और अब उसकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता। विचारों के अनुसार ही मनुष्य का जीवन बनता बिगड़ता रहता है। बहुत बार देखा जाता है कि अनेक लोग बहुत समय तक लोकप्रिय रहने के बाद बहिष्कृत हो जाया करते हैं। पहले तो उन्नति करते रहते हैं, फिर बाद में उनका पतन हो जाता है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि जिस समय जिस व्यक्ति की विचारधारा शुद्ध, स्वच्छ तथा जनोपयोगी बनी रहती है और उसके कार्यों की प्रेरणा स्रोत बनी रहती है, वह लोकप्रिय बना रहता है। किंतु जब उसकी विचारधारा स्वार्थ, कपट अथवा छल के भावों से दूषित हो जाती है तो उसका पतन हो जाता है। अच्छा माल देकर और उचित मूल्य लेकर जो व्यवसाय अपनी नीति, ईमानदारी और सहयोग को दृढ़ रखते हैं, वे शीघ्र ही जनता का विश्वास जीत लेते हैं और उन्नति करते जाते हैं। पर जो ही उसकी विचारधारा में गैर ईमानदारी, शोषण और अनुचित लाभ के दोषों का समावेश हुआ नहीं कि उसका व्यापार ठप होने लगता है। इसी अच्छी बुरी विचारधारा के आधार पर न जाने कितनी फर्में और कंपनियां नित्य ही उठती गिरती रहती हैं। विचारधारा में जीवन बदल देने की कितनी शक्ति होती है, इसका प्रमाण हम महर्षि वाल्मीकि के जीवन में पा सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका काम राहगीरों को मारना, लूटना और उससे प्राप्त धन से परिवार का पोषण करना था। एक बार देवर्षि नारद को उन्होंने पकड़ लिया। नारद ने रत्नाकर से कहा कि तुम यह पाप क्यों करते हो? चूंकि वे उच्च एवं निर्विकार विचारधारा वाले थे, इसलिए रत्नाकर डाकू पर उनका प्रभाव पड़ा, अन्यथा भय के कारण किसी भी वंचित व्यक्ति ने उसके सामने कभी मुख तक नहीं खोला था। उसका काम तो पकड़ना, मार डालना और पैसे छीन लेना था, किसी के प्रश्नोत्तर से उसका कोई संबंध नहीं था। किंतु उसने नारद का प्रश्न सुना और उत्तर दिया, अपने परिवार का पोषण करने के लिए। नारद ने पुनः पूछा कि जिनके लिए तुम इतना पाप कमा रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे? रत्नाकर की विचारधारा आंदोलित हो उठी और वह नारद को एक वृक्ष से बांधकर घर गया और परिजनों से नारद का जिक्र किया और उनके प्रश्न का उत्तर पूछा। सबने एक स्वर से निषेध करते हुए कहा कि हम सब तो तुम्हारे आश्रित हैं, हमारा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम पाप करते हो तो इससे हम लोगों को क्या मतलब, अपने पाप के भागी तुम खुद होगे। परिजनों का उत्तर सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गईं, उसकी विचारधारा बदल गई और नारद के पास आकर दीक्षा ली और तप करने लगा। आगे चलकर वही रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बने और रामायण महाकाव्य के प्रथम रचयिता। विचारों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह देवता को राक्षस और राक्षस को देवता बना सकती है। विचार शक्ति सदा अमोघ। विचारों की व्यक्ति निर्माण में बड़ी शक्ति होती है। विचारों का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। विचार परिवर्तन के बल पर असाध्य रोगियों को स्वस्थ तथा मरणासन व्यक्तियों को नया जीवन दिया जा सकता है। यदि आपके विचार अपने प्रति ओछे, तुच्छ तथा अवज्ञापूर्ण हैं तो उन्हें तुरंत ही बदल दो और उनके स्थान पर ऊंचे, उदात्त, यथार्थ विचारों का सृजन कर लीजिए। वह विचार कृषि आपको चिंता, निराशा अथवा पराधीनता के अंधकार से भरे जीवन को हरा भरा बना देगी। थोड़ा सा अभ्यास करने से यह विचार परिवर्तन सहज में ही लाया जा सकता है। इस प्रकार आत्मा चिंतन करिए और देखिए कि कुछ ही दिन में आप क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचार कीजिए, मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हूँ, मेरा उससे अविच्छिन्न संबंध है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और न वह मुझसे ही दूर रहता है। मैं शुद्ध बुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मेरे कर्तव्य भी पवित्र तथा कल्याणकारी हैं, उन्हें मैं अपने बल पर आत्मनिर्भर रहकर पूरा करूंगा। मुझे किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए, मैं आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और प्रबल माना जाता हूँ। असत तथा अनुचित विचार अथवा कार्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है और न किसी रोग दोष से ही मैं आक्रांत हूँ। संसार की सारी विषमताएं क्षणिक हैं, जो मनुष्य की दृढ़ता देखने के लिए आती हैं। उनसे विचलित होना कायरता है। धैर्य हमारा धन और साहस हमारा संबल है। इन दो के बल पर बढ़ता हुआ मैं बहुत से ऐसे कार्य कर सकता हूँ जिससे लोकमंगल का प्रयोजन बन सके, आदि आदि। इस प्रकार के उत्साही तथा सदाशितापूर्ण चिंतन करते रहने से एक दिन आपका अवचेतन प्रबुद्ध हो उठेगा, आपकी खोई शक्तियां जाग उठेगी, आपके गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार हो जाएगा और आप परमार्थ पथ पर उन्नति के मार्ग पर अनायास ही चल पड़ेंगे और तब न आपको चिंता, न निराशा और न असफलता का भय रहेगा, न लोक परलोक की कोई शंका। उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध तथा पवित्र बन जाएंगे जिस प्रकार के आपके विचार होंगे और जिनके चिंतन को आप प्रमुखता दिए होंगे। सभी का प्रयत्न रहता है कि उनका जीवन सुखी और समृद्ध बने। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग पुरुषार्थ करते हैं, धन संपत्ति कमाते, परिवार बसाते और आध्यात्मिक साधना करते हैं। किंतु क्या पुरुषार्थ करने, धन दौलत कमाने, परिवार बसाने और धर्म कर्म करने मात्र से लोग सुख शांति के अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं? संभव है इस प्रकार प्रयत्न करने से कई लोग सुख शांति की उपलब्धि कर लेते हों, किंतु बहुतायत में तो यही दिखता है कि धन संपत्ति और परिवार परिजन के होते हुए भी लोग दुखी और त्रस्त दिखते हैं, धर्म कर्म करते हुए भी असंतुष्ट और अशांत हैं। सुख शांति की प्राप्ति के लिए धन दौलत अथवा परिवार परिजन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता सद्विचारों की होती है। वास्तविक सुख शांति पाने के लिए विचार साधना की ओर उन्मुख होना होगा। सुख शांति न तो संसार की किसी वस्तु में है और न व्यक्ति में, उसका निवास मनुष्य के अंतःकरण में है, जो कि विचार रूप से उसमें स्थित रहता है। सुख शांति और कुछ नहीं, वस्तुतः मनुष्य के अपने विचारों की एक स्थिति है। जो व्यक्ति साधना द्वारा विचारों को उस स्थिति में रख सकता है, वही वास्तविक सुख शांति का अधिकारी बन सकता है। अन्यथा विचार साधना से रहित धन दौलत से सिर मारते और मेरा तेरा, इसका उसका करते हुए एक झूठे सुख मिथ्या शांति के मायाजाल में लोग यूं ही भटकते हुए जीवन बिता रहे हैं और आगे भी बिताते रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ साधना। वास्तविक सुख शांति पाने के लिए विचारों की साधना करनी होगी। सामान्य लोगों की अपेक्षा दार्शनिक, विचारक, विद्वान, संत और कलाकार लोग अधिक निर्धन और अभावग्रस्त होते हैं, तथापि उनकी अपेक्षा कहीं अधिक संतुष्ट, सुखी और शांत देखे जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सामान्य जन सुख शांति के लिए अधिकारी होते थे। सुख शांति के अन्य निषेध उपायों को न करते हुए भारतीय ऋषि मुनि अपने समाज को धर्म का अवलंबन लेने के लिए विशेष निर्देशन किया करते थे। जनता की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने जिन वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों आदि धर्म ग्रंथों का प्रणयन किया है, उनमें मंत्रों, तर्कों, सूत्रों व सूक्तियों द्वारा विचार साधना का ही पथ प्रशस्त किया है। मंत्रों का निरंतर जाप करने से साधक के पुराने कुसंस्कार नष्ट होते और उनका स्थान नए कल्याणकारी संस्कार लेने लगते हैं। संस्कारों के आधार पर अंतःकरण का निर्माण होता है। अंतःकरण के उच्च स्थिति में आते ही सुख शांति के सारे कोष खुल जाते हैं। जीवन में उनका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। मंत्र वास्तव में अंतःकरण को उच्च स्थिति में लाने के गुप्त मनोवैज्ञानिक प्रयोग हैं। जैसा कि पूर्व प्रकरण में कहा जा चुका है कि न तो सुख शांति का निवास किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में है और न स्वयं ही उनकी कोई स्थिति है। वह वास्तव में मनुष्य के अपने विचारों की ही एक स्थिति है। सुख शांति, उन्नति अवनति का आधार मनुष्य की शुभ अथवा अशुभ मनस्थिति ही है, जिसकी रचना तदनुरूप विचार साधना से ही होती है। शुभ और दृढ़ विचार मन में धारण करने से, उनका चिंतन और मनन करते रहने से मनोदेश में सात्विक भाव की वृद्धि होती है। मनुष्य का आचरण उदात्त तथा उन्नत होता है। मानसिक शक्ति का विकास होता है, गुणों की प्राप्ति होती है। जिसका मन दृढ़ और बलिष्ठ है, जिसमें गुणों का भंडार भरा है, उसको सुख शांति के अधिकार से संसार में कौन वंचित कर सकता है। भारतीय मंत्रों का अभिमत दाता होने का रहस्य यही है कि बार बार जपने से उनमें निवास करने वाला दिव्य विचारों का सार मनुष्य के अंतःकरण में भर जाता है, जो बीज की तरह वृद्धि पाकर मनोवांछित फल उत्पन्न कर देते हैं। प्राचीन भारतीयों की आयु औसतन 100 वर्ष की होती थी। जो व्यक्ति संयोगवश सामान्य जीवन में 100 वर्ष से कम जीता था, उसे अल्प आयु का दोषी माना जाता था, उसकी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता था। इस शतायुष्य का रहस्य जहां उनका सात्विक तथा सौम्य रहन सहन, आचार विचार और आहार विहार होता था, वहां सबसे बड़ा रहस्य उनकी तत्संबंधी विचार साधना रहा है। वे वेदों में दिए प्रभ्रवाम शरदः शतम् दीना श्याम शरद शतम् जैसे अनेक मंत्रों का जाप किया करते थे। यह मंत्र जाप आयु संबंधी विचार साधना के सिवाय और क्या होता था। गायत्री मंत्र की साधना का भी यही रहस्य है। इस मंत्र का जाप करने वालों को बहुधा ही तेजस्वी, समृद्धिवान तथा ज्ञानवान क्यों देखा जाता है। इसीलिए कि इस मंत्र के माध्यम से सविता देवता की उपासना के साथ सुख समृद्धि तथा ज्ञानपरक विचारों की साधना की जाती है। मनुष्य जीवन में जो कुछ पाता या खोता है, उसका हेतु मान भले ही किन्हीं और कारणों को लिया जाए, किंतु उसका वास्तविक कारण मनुष्य के अपने विचार ही होते हैं, जिन्हें धारण कर वह जान अथवा अनजान दशा में प्रत्यक्ष से लेकर गुप्त मन तक चिंतन तथा मनन करता रहता है। विचार साधना मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसके समान सरल तथा सद्य फलदायिनी साधना दूसरी नहीं है। मनुष्य जो कुछ पाना चाहता है, उसके अनुरूप विचार धारण कर उनकी साधना करते रहने से वह अपने मंतव्यों में निश्चय ही सफल हो जाता है। यदि किसी में स्वावलंबन की कमी है और वह स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भरता की सुखद स्थिति पाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह तदनुरूप विचारों की साधना करने के लिए इस प्रकार का चिंतन तथा मनन करे, मुझे परमात्मा ने अनंत शक्ति दी है। मुझे किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। परमुखापेक्षी रहना मानवीय व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं, परावलंबी होना कोई विवशता नहीं है, वह तो मनुष्य की दुर्बल वृत्ति ही है। मैं अपनी इस दुर्बल वृत्ति का त्याग कर दूंगा और स्वयं अपने परिश्रम तथा उद्योग द्वारा अपने मनोरथ सफल करूंगा। परावलंबी व्यक्ति पराधीन रहता है और पराधीन व्यक्ति संसार में कभी भी सुख और शांति नहीं पा सकता। मैं साधना द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का उद्घाटन करूंगा, शारीरिक शक्ति का उपयोग और इस प्रकार स्वावलंबी बनकर अपने लिए सुख शांति की स्थिति स्वयं अर्जित करूंगा। निश्चय ही इस प्रकार के अनुकूल विचारों की साधना से मनुष्य की परावलंबन की दुर्बलता दूर होने लगेगी और उसके स्थान पर स्वावलंबन का सुखदाय भाव बढ़ने और दृढ़ होने लगेगा। सुख शांति का अपना कोई अस्तित्व नहीं, यह मनुष्य के विचारों की ही एक स्थिति होती है। यदि अपने अंतःकरण में उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता एवं आनंद अनुभव करने की वृत्ति जगाली जाए और दुख, कष्ट और अभाव की अनुभूति की हठात उपेक्षा दूर की जाए, तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य सुख शांति के लिए लालायित बना रहे। मैं आनंद रूप परमात्मा का अंश हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप आनंदमय ही है, मेरी आत्मा में आनंद के कोष भरे हैं, मुझे संसार की किसी वस्तु का आनंद अपेक्षित नहीं है। जो आनंद रूप, आनंदमय और आनंद का उद्गम आत्मा है, उससे दुख, शोक अथवा ताप संताप का क्या संबंध। किंतु यह संभव तभी है जब तदनुरूप विचारों की साधना में निरत रहा जाए, उनकी सृजनात्मक शक्ति को सही दिशा में नियोजित रखा जाए। सद्विचारों का निर्माण सत अध्ययन सत्संग से। कोई सद्विचार तभी तक सद्विचार है जब तक उसका आधार सदाशयता है, अन्यथा वह सद्विचारों के साथ ही गिना जाएगा। चूंकि मनुष्य के जीवन में हर प्रकार और हर कोटि के असद्विचार विष की तरह ही त्याज्य हैं, उन्हें त्याग देने में ही कुशल क्षेम कल्याण तथा मंगल है। वे सारे विचार जिनके पीछे दूसरों और अपनी आत्मा का हित सन्निहित हो, सद्विचार ही होते हैं। सेवा एक सद्विचार है। जीव मात्र की निस्वार्थ सेवा करने से किसी को कोई प्रत्यक्ष लाभ तो होता दिखता नहीं, दिखता है उस व्रत की पूर्ति में किया जाने वाला त्याग और बलिदान। जब मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग कर सेवा करता है, तभी उसका कुछ हित साधन कर सकता है। स्वार्थी और सांसारिक लोग सोच सकते हैं कि अमुक व्यक्ति में कितनी कम समझ है जो अपनी हित हानि करके अकारण ही दूसरों का हित साधन करता रहता है। निश्चय ही मोटी आंखों और छोटी बुद्धि से देखने पर किसी का सेवा व्रत उसकी मूर्खता ही लगेगी। किंतु यदि उस व्रति से पता लगाया जाए तो विदित होगा कि दूसरों की सेवा करने में वह जितना त्याग करता है, वह सुख शांति की तुलना में एक तृण से भी अधिक नगण्य है जो उसकी आत्मा अनुभव करती है। एक छोटे से त्याग का सुख आत्मा के एक बंधन को तोड़ देता है। देखने में हानिकर लगने पर भी अपना वह हर विचार सद्विचार ही है जिसके पीछे परहित अथवा आत्महित का भाव अंतर्हित हो। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य लोक नहीं, परलोक ही है। इसकी प्राप्ति एकमात्र सद्विचारों की साधना द्वारा ही हो सकती है। अस्तु आत्म कल्याण और आत्म शांति के चरम लक्ष्य की सिद्धि के लिए सद्विचारों की साधना करते ही रहना चाहिए। असद्विचारों के जाल में फंस जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अज्ञान, अबोध अथवा असावधानी से ऐसा हो सकता है। यदि यह पता चले कि हम किसी प्रकार असद्विचारों के पास में फंस गए हैं, तो इसमें चिंतित अथवा घबराने की कोई बात नहीं है। यह बात सही है कि असद्विचारों में फंस जाना बड़ी घातक घटना है, किंतु ऐसी बात नहीं कि इसका कोई उपचार अथवा उपाय न हो सके। संसार में ऐसा कोई भी भव रोग नहीं है जिसका निदान अथवा उपाय न हो। असद्विचारों से मुक्त होने के भी अनेक उपाय हैं। पहला उपाय तो यही है कि उन कारणों का तुरंत निवारण कर देना चाहिए जो कि असद्विचारों में फंसाते रहे हैं। यह कारण हो सकते हैं कुसंग, अनुचित साहित्य का अध्ययन, अवांछनीय वातावरण, खराब मित्रों और संगी साथियों के संपर्क में रहने से मनुष्य के विचार दूषित हो जाते हैं। अस्तु ऐसे अवांछनीय संग का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। इस त्याग में संपर्कजन्य संस्कार अथवा मोह का भाव आड़े आ सकता है। कुसंग त्याग में दुख अथवा कठिनाई अनुभव हो सकती है, लेकिन नहीं, आत्म कल्याण की रक्षा के लिए उस भ्रामक कष्ट को सहना ही होगा और मोह का वह शिव बंधन तोड़कर फेंक देना ही होगा। कुसंग त्याग के इस कर्तव्य में किन्हीं साधु पुरुषों के सुसंग की सहायता ली जा सकती है। बुरे और अविचारी मित्रों के स्थान पर अच्छे भले और सदाचारी मित्र, सखा और सहचर खोजे और अपने साथ लिए जा सकते हैं, अन्यथा अपनी आत्मा सबसे सच्ची और अच्छी मित्र है। एकमात्र उसी के संपर्क में चले जाना चाहिए। असद्विचारों के जन्म और विस्तार का एक बड़ा कारण असद साहित्य का पठन पाठन भी है। जासूसी, अपराध और अश्लील श्रृंगार में भरे सस्ते साहित्य को पढ़ने से भी विचार दूषित हो जाते हैं। गंदी पुस्तकें पढ़ने से जो छाया मस्तिष्क पर पड़ती है, वह ऐसी रेखाएं बना देती है जिनके द्वारा असद्विचारों का आवागमन होने लगता है। विचार विचारों को भी उत्तेजित करते हैं। एक विचार अपने समान ही दूसरे विचारों को उत्तेजित करता और बढ़ाता है। इसलिए गंदा साहित्य पढ़ने वाले लोगों का अश्लील चिंतन करने का व्यसन हो जाता है। बहुत से ऐसे विचार जो मनुष्य के जाने हुए नहीं होते, यदि उनका परिचय न कराया जाए तो न तो उनकी याद आए और न उनके समान दूसरे विचारों का ही जन्म हो। गंदे साहित्य में दूसरों द्वारा लिखे अवांछनीय विचारों से अनायास ही परिचित हो जाता है और मस्तिष्क में गंदे विचारों की वृद्धि हो जाती है। अस्तु, गंदे विचारों से बचने के लिए अश्लील और असद साहित्य का पठन पाठन वर्जित रखना चाहिए। असद्विचारों से बचने के लिए अवांछनीय साहित्य का पढ़ना बंद कर देना अधूरा उपचार है। उपचार पूरा तब होता है जब उसके स्थान पर सद साहित्य का अध्ययन किया जाए। मानव मस्तिष्क कभी खाली नहीं रह सकता, उसमें किसी न किसी प्रकार के विचार आते जाते ही रहते हैं। बार बार निषेध करते रहने से किन्हीं गंदे विचारों का तारतम्य तो टूट सकता है, किंतु उनसे सर्वथा मुक्ति नहीं मिल सकती। संघर्ष की स्थिति में वे कभी चले भी जाएंगे और कभी आ भी जाएंगे। अवांछनीय विचारों से पूरी तरह बचने का सबसे सफल उपाय यह है कि मस्तिष्क में सद्विचारों को स्थान दिया जाए। सद्विचारों को प्रवेश पाने का अवसर ही न मिलेगा। मस्तिष्क में हर समय सद्विचार ही छाए रहें, इसका उपाय यही है कि नियमित रूप से नित्य सत्साहित्य का अध्ययन करते रहा जाए। वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त अच्छे और ऊंचे विचारों वाले साहित्यकारों की पुस्तकें सत्साहित्य की आवश्यकता पूरी कर सकती हैं। यह पुस्तकें स्वयं अपने आप खरीदी भी जा सकती हैं और सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत पुस्तकालयों से भी प्राप्त की जा सकती हैं। आजकल न तो अच्छे और सस्ते साहित्य की कमी रह गई है और न पुस्तकालयों और वाचनालयों की कमी। आत्मकल्याण के लिए इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाना ही चाहिए। समाज में फैली हुई अंधता, मूर्ता तथा कुरीतियों का कारण अज्ञान अंधकार होता है। अंधकार में भ्रम होना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार अंधेरे में वस्तु स्थिति का ठीक ज्ञान नहीं हो पाता, पास रखी हुई चीज का स्वरूप यथावत दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अज्ञान के दोष से स्थिति, विषय आदि का ठीक आभास नहीं होता। वस्तुस्थिति के ठीक ज्ञान के अभाव में कुछ का सूझने और होने लगता है। विचार और उनसे प्रेरित कार्य के गलत हो जाने पर मनुष्य को विपत्ति, संकट अथवा भ्रम में पड़कर अपनी हानि कर लेना स्वाभाविक ही है। अंधकार के समान अज्ञान में भी एक अनजान भय समाया रहता है। रात के अंधकार में रास्ता चलने वालों को दूर के पेड़ पौधे, ठूंठ, स्तूप तथा मील के पत्थर तक चोर डाकू, भूत प्रेत आदि दिखाई देने लगते हैं। अंधकार में जब भी जो चीज दिखाई देगी वह शंकाजनक ही होगी, विश्वास अथवा उत्साहजनक नहीं। घर में रात के समय में पेशाब, शौच आदि के लिए आने जाने वाले अपने माता पिता, बेटे बेटियां तक अंधकाराच्छन्न होने के कारण चोर, डाकू या भूत चुड़ैल जैसे भान होने लगते हैं और कई बार तो लोग उनकी पहचान न कर सकने के कारण टोक उठते हैं या भय से चीख मार बैठते हैं। यद्यपि उनके वे स्वजन पता चलने पर भूत चुड़ैल अथवा चोर डाकू नहीं निकले जो कि न पहचानने से पूर्व थे, किंतु अंधकार के दोष से वे भय एवं शंका के विषय बने। भय का निवास वास्तव में न तो अंधकार में होता है और न वस्तु में, उसका निवास होता है उस अज्ञान में जो अंधेरे के कारण वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होने देता। ज्ञान के अभाव में जनसाधारण भ्रांतिपूर्ण एवं निराधार बातों को उसी प्रकार समझ लेता है जिस प्रकार हिरण मरु मरीचिका में जल का विश्वास कर लेता है और निरर्थक ही उसके पीछे दौड़ दौड़ कर जान तक गंवा देता है। अज्ञान का परिणाम बड़ा ही अनर्थकारी होता है। अज्ञान के कारण ही समाज में अनेकों अंधविश्वास फैल जाते हैं। स्वार्थी लोग किसी अंध परंपरा को चलाकर जनता में यह भय उत्पन्न कर देते हैं कि यदि वे उक्त परंपरा अथवा प्रथा को नहीं मानेंगे तो उन्हें पाप लगेगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें लोक में अनर्थ और परलोक में दुर्गति का भागी बनना पड़ेगा। अज्ञानी लोग भय से प्रीति होने के सिद्धांतानुसार उक्त प्रथा परंपरा में विश्वास एवं आस्था करने लगते हैं और तब उसकी हानि को देखते हुए भी अज्ञान एवं आशंका के कारण उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। मनुष्य आंखों देखी हानि अथवा संकट से उतना नहीं डरते जितना कि अनागत आशंका से। ज्ञानजन्य भ्रम जंजाल में फंसे मनुष्य का दीन दुखी रहना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि ऋषियों ने तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश देते हुए मनुष्यों को अज्ञान की यातना से निकलने के लिए ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। भारत का आध्यात्म दर्शन ज्ञान प्राप्ति के उपायों का प्रतिपादक है। अज्ञानी व्यक्ति को शास्त्रकारों ने अंधे की उपमा दी है। जिस प्रकार बाह्य नेत्रों के नष्ट हो जाने से मनुष्य भौतिक जगत का स्वरूप जानने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में बौद्धिक अथवा विचार जगत की निर्भ्रांत जानकारी नहीं हो पाती। बाह्य जगत के समान मनुष्य का एक आत्मिक जगत भी है जो कि ज्ञान के अभाव में वैसे ही तमसाच्छन्न रहता है जैसे आंखों के अभाव में यह संसार। सद्ज्ञान में ही वह सृजनात्मक शक्ति सन्निहित है जो मनुष्य को प्रगति पथ पर चढ़ने की प्रेरणा देती एवं सहायता करती है। इसलिए प्रगति के आकांक्षी व्यक्ति को सत्साहित्य के माध्यम एवं सत्संग के द्वारा सद्ज्ञान को सद्विचारों से समृद्ध करते रहना चाहिए, ताकि वह उनकी सृजनात्मक शक्ति के सहारे उत्कर्ष की ऊंची मंजिलें पार करता चला जाए। चिदानंद रूप मनोबुद्धय अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप वन न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुः न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादम न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप टू न मे द्वेषरागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप थ्री न पुण्यम न पापन न सौख्यम न दुख न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अह भोजन नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप फोर न मे मृत्युशंका न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म। न बंधुन मित्रम गुरुनैव शिष्य चिदानंद रूप। 5. अह निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वात् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। न चंत नैव मुक्तिर्मीह चिदानंद रूप। 6. आद्य गुरु शंकराचार्य कृत।